गुरवेगं गचन्द्राञ्जनाधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्तगन्तमनुते तमपे चतुष्टं वैपायुकाशय पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं हम लोग हरिनाम करते हैं, मंत्र जप करते हैं, किंतु सिद्धि नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य और अनर्थ भी नहीं जाते। इसका कारण क्या है? क्या करता है आगे पर लेखन कर्मी? देखते हैं कि एक आदमी सांप का मंत्र सिद्ध कर लेता है और किसी को सांप काट लेता है तो अपने मंत्र के बल से कौड़ियों के द्वारा सांप को पकड़ करके बुला लेता है और उसका पीस झाड़ देता है। तो क्या वजह है जो हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और सिद्धि नहीं होती? तो उस सांप के मंत्र में सिद्धि में जो लगन है उसको विश्वास है और कठोर तपस्या के बाद में सिद्ध करता है, ऐसा हम लोग नहीं करते। बातचीत मत करो, क्या नहीं आ रहा? इतना जोर से हो रहा है। हम लोग साधन भजन करते हैं, निष्ठा से नहीं करते। ₹800-900 या 1000 या 500 मिलता है, उसके लिए ये बड़ा भारी मुश्किल। एक नौकरी करने में पैसा मिलने के लिए हम लोग 8 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करके 10 घंटा करते हैं, और रात में यदि शिफ्ट बदलती है तो रात में 8 घंटा जगते हैं, 6 घंटा जगते हैं। और भगवान के लिए, नाम करने के लिए, सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? 81 व्रत के सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं? यदि अनुकल्प भी है तो वो थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं? वैसा निराहार रह करके, रात्र जागरण करके 81 करके देखो जिसका फल होता है कि नहीं, तब उसका दोष उस पर मंत्र का। इसलिए मंत्र तो ठीक है, किंतु हम लोग जो भजन करते हैं, भजन की पद्धति जैसी होनी चाहिए वो ठीक वैसी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं, मन संहरण शौचम मौनम मंत्रार्थ विचिंतन अव्यग्र अव्यग्रतम अनिर्वेदो निर्वेदो जप संपत्ति हेतव। हम लोग जो हरिनाम का कीर्तन या जप करते हैं, विशेष करके मंत्र का जप या हरिनाम का मंत्र, तो उसमें मन संहरण, मन को विषयों से हटा लेना, उसमें विषयों की चिंता मत करो। शौच पवित्र होकर, अपवित्र अवस्था में मत करो। मौनम मौन रहो, उसमें बातचीत मत करो। मंत्रार्थ चिंतन मंत्र का अर्थ चिंतन करो, जो कल बतलाया था वैसे मत के अर्थ की चिंतन करो। अव्यग्रत्वम हरिनाम करते समय, मंत्र जपते समय, पूजा करते समय, रसोई बनाते समय अव्यग्र रहो, व्यग्रता मत आए। अब क्या ये क्या चिंता, जरा उठ करके देखें, उठ करके चल रहे हैं, फिर रहे हैं, व्यग्र चित्त है, नहीं होगा। इसलिए व्यग्र मत हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं देख करके और व्यग्र चित्त है, क्या चित्त ध्यान में आएगा? इसलिए चित्त को व्यग्र मत करो। शांत चित्त से जप करो, मंत्र करो, निर्वेद हो, संसार से पूर्ण रूप से निर्वेद हो। निर्वेद माने के वेद माने जानना, सुख दुख की अनुभूति ये वेद है। निर्वेद संसार से जो आसक्ति है ये नहीं रहने का नाम। संसारी किसी भी वस्तु में ये आसक्ति इत्यादि न रहे। यदि आसक्ति रहेगी तो मंत्र जप सिद्ध नहीं होगा, इसलिए निर्वेद भी होना चाहिए। किस लिए? इसलिए कि जिन वस्तुओं में आसक्ति है वो यदि नष्ट हो गई तो चित्त अशांत हो जाए, इसलिए वो जप या मंत्र या कीर्तन या पठन पाठन इत्यादि ये भक्ति सिद्ध नहीं होगी। इसलिए विषयों में निर्भेद होना जरूरी है। अभी सुन लिया, यहाँ से जाते हुए सीढ़ी पर ये छोड़ जाना हमारे लिए, घर में मत ले जाना, नहीं तो सिद्धि हो जाएगी। इसलिए यदि सिद्धि आप लोग चाहते हैं तो इसको हृदय में रख ली। ये जितने जप संपत्ति हेतव, क्या क्या? मन को विषयों से हटाओ, एकाग्र करो, शौच, अंतर शौच और बाहिर शौच दोनों, मौनम, मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र का अर्थ चिंतन, अव्यग्रत्व, व्यग्र मत होना, शांत रहना, निर्वेद, विषयों से आसक्ति हटाना, ये सब मंत्र जप है तबाह। मंत्र जप में ये सिद्धि के हाथ कारण, विशेष करके मंत्र को जपने में जो जप रहे हैं वो मंत्र का देवता कौन है, कौन देवता है, इसको देखो। जैसे गोपाल मंत्र हम जप रहे हैं उसका देवता कौन है, कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ, एक ही ये नंदनंदन श्याम सुंदर। उसी प्रकार से जितने भी मंत्र हैं ब्रह्म गायत्री में, ब्रह्म गायत्री का इष्ट देव कौन है, अधिष्ठात्री देवता कौन है, गौर मंत्र में, गुरु मंत्र में, काम गायत्री में, महामंत्र में, पंचतत्व में अधिष्ठात्री देवता कौन है, और उसके साथ में हमारा संबंध क्या है, जो इष्ट देव है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, इसको कहते हैं न्यास। न्यास माने क्या? किसी चीज में किसी चीज को लगा दे, अर्थात आत्मा के साथ में भगवान के साथ में जीव का न्यास जोड़ना, इन चीजों से होता है, इसलिए न्यास। मंत्र का तात्पर्य उद्दिष्ट देवता कौन है और उसके साथ में हमारा संबंध क्या है, ये दीक्षा का प्रधान लक्ष्य है। फिर दूसरी बात, मंत्र देवता जो है उसके चरण में प्रपत्ति होनी चाहिए। प्रपत्ति माने क्या? प्रपत्ति वो सब कुछ करने वाला है, उसकी उसके बिना हमारा काम कुछ नहीं होगा, इसलिए हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ, आप हमारा सब कुछ करने में समर्थ हैं। तीसरी बात, उसके चरणों में शरणागति होगी। प्रपत्ति अभी आत्मज्ञान नहीं है तभी प्रपत्ति होगी, हे प्रभु हमारे ऊपर में आप कृपा कीजिए, आप सब समर्थ हैं इसलिए हमारे ऊपर में कृपा, मैं आपको प्रपत्ति स्वीकार। दूसरी तीसरी बात, शरणागति। शरणागति के छह लक्षण हैं, उन छह लक्षणों को पूर्ण रूप से मानना। कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, वे हमारे रक्षा करने में समर्थ हैं, हमारा पालन पोषण वही करते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पालन पोषण नहीं करता। मारे कृष्ण राखे के, यदि कृष्ण मारते हैं तो कोई नहीं रक्षा करेगा, और कृष्ण रक्षा करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, इसलिए मैं उनका शरणागत होता हूँ। उनके भक्ति के अनुकूल जितनी चीजें ग्रहण करते हैं, प्रतिकूल को दूर करते हैं या संकल्प, और वो हमारे रक्षा करने वाले हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ रक्षक के रूप में। दीनहीन हो जाना, क्यों मैं अणु हूं, कब मर जाऊंगा कोई भी ठीक नहीं, मैं काम क्रोध को जीत नहीं सकता, कुछ भी नहीं जानता, इसलिए दीनहीन हो, दीनों की पुकार को सुनते हैं। और अंत में आत्मनिवेदन, यह शरणागति के 6 लक्षण हैं। किंतु होने पर भी आत्मनिवेदन को पृथक रूप से लो। एक तो हुआ प्रपत्ति, शरणागति और ये आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन गुरु के चरण में पहले आत्मनिवेदन करो। जो आत्मा नहीं जानता है ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो आत्मनिवेदन नहीं कर सकता, कुछ उन्नत अवस्था नहीं होगा। इसलिए पहले गुरु के चरण में आत्मनिवेदन करो। आत्मनिवेदन माने क्या, यह शरीर, यह मन, आत्मा, हमारी सारी संपत्ति, हमारा पुत्र, कन्या, हमारा जो कुछ धन संपत्ति, मानस, देह, गेह, जे किछ मोर अर्पिनु तुहा पदे, हमने इनको दे दिया 1,00,000 रुपया, इसको रखना और समय पर जब मांगूंगा तो दे देना। 1,00,000 रुपया दे दिया। मान लिया कि ये नष्ट करते हैं लेकर, अब इस किसका दायित्व है, इनका दायित्व है। तो कृष्ण तो समर्थ हैं, इसलिए कृष्ण को हम अपना सब दायित्व दे दिया, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब उनको अर्पण कर दिया, मन बुद्धि। वो तो चोरी नहीं करेंगे, मनुष्य चोरी कर सकता है, और वो समर्थ भी नहीं। तो इस प्रकार से उनके चरणों में दे दिया, तो फिर कोई चीज नष्ट हो जाती है तो इसकी चिंता किस पर है, उसका दायित्व तो किस पर है। यदि हमारा हमने अपना पुत्र भी कृष्ण को अर्पित कर दिया, अपने स्वामी को अर्पित कर दिया, अपना शरीर भी दे दिया, और हमारे लड़के को रोग होता है, वो मर जाता है, ये दायित्व तो किस पर है। यदि आपने यह दायित्व तो उन्हें नहीं दिया, आज मरने पर रोते हैं, तो यह शरणागति हो, आत्मनिवेदन नहीं। कोई भी चीज आपने भगवान को अर्पित कर दिया, धन, ये प्रभु ये सारा धन आपका है, मैं मैनेजर हूँ। तो जो मैनेजर होता है, मालिक की यदि किसी काम में घाटा लग जाए या नफा हो, उसमें मैनेजर को क्या मिलेगा, कोई प्रशंसा कोई थोड़ी सी मिल सकती है। किंतु मान लिया कि उसका घाटा लग गया 10,00,000 का, तो मैनेजर को भरना पड़ेगा नहीं, वो तो मालिक को भरना पड़ेगा। इले तुमको लाभ है हानि है, जीवन मरण लाभ हानि जस अपजस, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। यदि तुम चिंता करते हो तो इसका मतलब है तुमने आत्मनिवेदन नहीं किया। इसलिए सच्चे अर्थों में ये पंचांग है, पंचांग इसको कहते हैं। पहला अंग क्या हुआ, मंत्र का अर्थ और उसका इष्ट देवता, और उसे हमारा क्या संबंध है। तो मंत्र का देवता कौन है और उसे हमारा क्या संबंध है, एक। दूसरा मंत्र का अर्थ, ठीक। तीसरा हुआ प्रपत्ति, फिर शरणागति और आत्मा। ये पांचों के साथ में यदि मंत्र जप करेंगे ऐसा समझ करके बूझ करके, तो मंत्र का फल होगा शीघ्र, बहुत जल्दी। और नहीं तो इसी में जन्म जन्मांतर कट जाएगा, इसके सीढ़ी पर आप आई नहीं सकते, इसलिए समझिए। उसी को उसमें हमने बतलाया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ये कैसे वो भजन करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हमने बतलाया। मन को ये करना, संहार करना विषयों से, एकांत चित्त करना, शौच, मौन, मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम और निर्विघ्न, वो उसी पांचों के अंतर्गत ये हैं। इसलिए मूल वो पांच है। इसलिए जिसको मंत्र की सिद्धि करनी है, भगवान के चरणों में प्रेम करना है, भक्ति का द्वार यह है, उसको अच्छी तरह से पालन करो, और नहीं तो तुम अपने को धोखा दे रहे हो, ये समझ रखो। फिर वो बेकार का ये भजन तजन उसका कोई काम का नहीं आएगा, ये समझ लो। केवल हरिनाम करने से ही नहीं होगा, कैसे होगा अगले अध्याय में ये बतलाएंगे। मंत्र को प्रकाश करने वाले, ये तत्वों का देने वाले, ये साधुओं का संघ है। जिसका अच्छा तरह से साधु संघ होगा उसका नाम भी शुद्ध होगा। आज जिनको संघ नहीं है, जिनके विषय वासनाएं अभी हैं, संसारिक लौकिक वस्तुओं की भोग की लालसा है और मुक्ति की लालसा है और हरिनाम वो कराए निरंतर 24 घंटा, क्या होगा? भक्ति नहीं होगी। इसलिए साधु संघ में नाम कीर्तन, साधु संघ में स्मरण, साधु संघ में सारी क्रियाएं होनी चाहिए, और नहीं तो नहीं होगा। तन्नाम रूप चरिता आदि सुकृत नानु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन बजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नैद अखिलाम इति उपदेश। यदि संघ ठीक नहीं है और अपनाम करते हैं तो सदा नाम अपराध होता रहेगा। यदि मध्यम के साथ में रह करके हम कर रहे हैं तो वो उससे नामाभास तक आएगा। उत्तम वैष्णव के साथ में रहेंगे जिनका शुद्ध नाम होता है और उसके संग में रह करके भजन करेंगे तो आपका नाम शुद्ध होगा। इसलिए नाम वो चिंतामणि है। आपकी यदि बुरी ही चिंताएं हैं तो बुरी चीजों को देता है, अच्छी चीज है तो अच्छी चीज को चिंतामणि देगी। तो जब आपकी कामना ही इतनी सुंदर नहीं है, साधु संग आपका नहीं है, तो हरिनाम भी आपकी इच्छा को वो पूर्ण नहीं, प्रेम नहीं देंगे। इसलिए हरिनाम स्वयं भगवान होने पर भी साधु संग के आश्रय में वो हरिनाम होना चाहिए। कहते हैं कि भागवत में ऐसा कहा गया है, विशेष करके कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं, किंतु यह हरिनाम कैसा होना चाहिए? नक्तम जीवा च गतभिर जित जित निद्र एको एको निर्विन्न इच्छित पथो मितभुक् प्रशांत चत्त अच्युते भगवती स्वमनो न सज्जे नामानि तत रति कर्णानि पठित पिलज्ज। नक्तम दिवाच दिन में और रात में, भक्ति मनोहर ठाकुर जी इसका अनुवाद कर रात्रि दिन उनिद्र, रात और दिन में सोए नहीं उनिद्र। प्रेम की परिभाषा के लिए गए, प्रेम जब होगा तब कैसे होगा? बातचीत करो, बाहर कर देंगे यहाँ से। यदि बातचीत किया सीधे बैठो तन करके, यदि सुनना है जो सीधा नहीं बैठेगा उसको उठा देंगे खड़ा, स्टैंड अप ऑन द बेंच कर देंगे। रात दिन उनिद्र, उनिद्र माने क्या? नींद नहीं जिनकी है, निर्विन्न चित्त उद्विग्न नहीं है, किसी चीज की चिंता उद्वेग नहीं हृदय में, निर्भय, प्रहलाद महाराज इत्यादि अर्जुन इत्यादि की तरफ में निर्भय है, हरिदास ठाकुर की तरफ में निर्भय है। मित भू कितना फल बाहर नहीं, मित भू आवश्यक जितना है उतना ही आहार, उसको क्या कहते हैं जितना युक्त आहार। युक्त आहार माने क्या? मान लिया कि एक आदमी के लिए, एक छोटे से लड़के के लिए जिनका शरीर छोटा है, बौना है, छोटा है, पेट भी छोटा है, जैसे हमारे ये हैं, क्या नाम है क्या सुबल सका, ये दो रोटी को हजम नहीं कर सकते तो एक रोटी डेढ़ रोटी खाए। और आपके पीछे जो बैठे हैं नाम क्या है? दामोदर जी, इनको डेढ़ रोटी देंगे तो ये मर जाएंगे, इसलिए इनके लिए 10 रोटी युक्त है, 10 रोटी युक्त है। इसलिए युक्त वैराग्य, युक्त भोजन, युक्त निद्रा, गीता में भी इसको बतलाया युक्त आहार विहार। आहार माने भोजन, विहार माने शयन इत्यादि, युक्त रूप में होना चाहिए। भगवत भक्ति के कथा के अतिरिक्त, भगवान की कथाओं के अतिरिक्त कोई बातचीत न करे, किसी की चिंता में रहे, प्रशांत, भगवान का भजन करने वाला सब समय हंसता हुआ रहेगा, प्रशांत, जैसे समुद्र में, पैसिफिक ओशन में
एकदम सब समय प्रशांत अगाध जल। लहरें कहाँ होती हैं? जहां पर छिछला समुद्र है, पानी कम है, जहां पर अगाध समुद्र है, जिसमें एवरेस्ट से भी डूब जाए, 5-6 माइल का पहाड़ भी ऊंचा का डूब जाए, एकदम शांत प्रशांत। इसलिए भजन करने वाला रूप गोस्वामी जैसा हरी कथा हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी, रघुनाथ भट्ट जी कथा बोल रहे हैं और वहां पर हजारों आदमी बैठे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई शिशक रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, किसी नाक से लाल आ रहा है, किसी का रोमांच हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है और रूप गोस्वामी को कुछ नहीं। तो लोगों ने देखा भाई सबको कुछ हो रहा है, इनको क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात। तो देखा जी तो ये तो चुपचाप ऐसे बैठे हुए जीवित हैं कि मर गए हैं। तो जाकर के देखा जीवित रहने का कोई लक्षण नहीं है, केवल एक लक्षण है थोड़ा सा श्वास आता है कि नहीं। तो हाथ ऐसा किया तो उसमें जो श्वास गर्म आई उसमें हाथ में बड़े बड़े फफोले हो गए। थोड़े से पानी में मछली यदि चलती है तो पानी गंदा हो जाता है, अगाध समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां चलने पर भी पानी गंदा नहीं होता। ऐसे ये जो भक्ति है इसमें जो बड़े बड़े अगाध वाले ये सब है, वो जो दुख कष्ट इत्यादि आने पर भी कैसे रहेंगे? प्रशांत। कौन बोल रहा है? एकदम प्रशांत रहेंगे भाई। दुख कष्ट, दुख का बाप भी आए, कोई गला काटने के लिए आ जाए, कोई चिंता नहीं। यदि प्रभु चाहते हैं ये मरना है तो मर जाएंगे, और प्रभु चाहते हैं ये नहीं ये बचा रहे तो हम बच जाएंगे। प्रभु ने जन्म दिया है, जन्म मरण इत्यादि के सबके वही विधाता हैं, अतः हमको चिंता करने की बात। इसलिए प्रशांत तो होगा निर्जन, निर्जन में चिंतन करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, चिंतामय भगवान की लीला की कथाओं का चिंतन करेगा। लज्जा त्याग त्यजी कृष्ण रति उठी पकना, लज्जा को छोड़ करके साधुओं के संग निरंतर बैठ करके जो हरि नाम ऐसा करता है, कोई कारण नहीं है कि सिद्धि नहीं होगी, वो जो कहेगा वही हो जाएगा, जो चिंता करेगा वही हो जाएगा, सर्व सिद्धियां हाथ में आ जाएंगी। किंतु भक्त इनसे डरते हैं इसलिए इनको दूर रखते हैं, कभी भी कोई कामना नहीं करते, सिद्धि नहीं चाहते, कोई ऐसा हो जाए वो हमारा शत्रु मर जाए या हमको रिद्धि सिद्धि मिल जाए, हम जो कहें वो सत्य हो जाए, किंतु यदि कामना आ गई तो जरूर पूर्ण हो जाएगा, ये निश्चित रूप में अनुभूति का विषय है। यदि भक्त कोई भी चिंता विश्व का कर दे वो झट पूरी हो जाएगी। इसलिए कोई भी चिंता नहीं करे भक्त, कोई कामना ना करे कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त, अब चलिए दूसरा प्रकरण, द्वितीय मास द्वितीय याम साधन, वो तब हुआ श्रद्धा का व्यक्त, अब दूसरा हुआ क्या? प्रातःकालीन भजन, ये है अनर्थ की निवृत्ति। अनर्थ क्या है और उनकी निवृत्ति कैसे होगी, इस पर जो भजन कर रहा है उस साधक को विचार करना आवश्यक, अन्यथा लाख वर्ष तक लाख जन्म का परिणाम करते रहे और अनर्थ को दूर करने के लिए भी चेष्टा नहीं की तो कुछ नहीं होगा, कोई अर्थ धर्म का मोक्ष इनमें से कुछ नहीं जाएगा। नाम नामकारी पहले श्लोक कहते हैं, नाम करते समय में प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, नाम को भगवान जानते हैं। अपदमन जसोदानंद नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र बिंदा बनेन्द्र प्रणत करुण कृष्णा विद्यनेक स्वरूपे तई मम रुचि उच्चै वर्धतं नामधेय। हे नामधेय, नामधेय कौन? ये ब्रजन नंदन श्याम सुंदर नामधेय, नाम और नामधेय नाम को धारण करने वाले ये कौन है? स्वरूपता स्वयं कृष्ण है। इसलिए हे नाम को धारण करने वाले कृष्ण, आप यशोदा के नंदन हैं। एक समय किसी ने पूछा कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या? उन्होंने कहा यशोदा नंदन श्याम सुंदर नंद नंदन राधा कांत, यही रूढ़ी अर्थ है कृष्ण का। और आकर्षण करना ये कृष्ण इत्यादि व्युत्पत्तिगत जो अर्थ हैं ये गौण है, ये नाम का तात्पर्य नहीं। कोई भी आकर्षण करता है तो नारायण भी आकर्षण करते हैं तो उनको भी कृष्ण कहेंगे। एक चुंबक पत्थर भी तो आज आकर्षण, उसको कृष्ण कहेंगे, इसलिए उसका नाम कृष्ण पत्थर है, ठीक है कृष्ण पत्थर होने पर, किंतु कृष्ण नहीं है, इसलिए कृष्ण कहने से क्या होगा, ब्रजनंदन श्याम सुंदर और कुछ नहीं, बस ऐसा धारणा रखें। व्युत्पत्तिगत अर्थ है जिनको अभी श्रद्धा नहीं हुई है, ऐसे बड़े बड़े पंडितों के लिए ये सब की चीजें हैं, इसलिए कृष्ण कहने के साथ ही साथ में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर इसे भी बढ़ करके और ऊपर चला जाएगा, राधा कांत राधा मोहन राधा रमन ये सब नाम है। उनसे प्रार्थना की जाए हे कृष्ण ये सब जो लीलाएं हैं उन लीलाओं के साथ में और लीला परिकरों के साथ में आप हमारे हृदय में ये नाम करते समय करो, और नाम कीर्तन करते समय में संसार की बातें अपनी प्रतिष्ठा की बातें रुपया पैसे की बातें, आज रुपये होता तो हमारी ये दुर्गति गई होती, ऐसा सोचना इतना हमें ये रुपया के वजह से ये काम नहीं कर रहे, रुपया होता तो सोने का मंदिर खड़ा कर देते, ये सब चिंता मत करो कोई भी संसार। फिर कहते हैं श्रुति स्मृति साधक, साधक को इस प्रकार से समझना चाहिए और वैसा ही काम करना चाहिए, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिंग बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात रेव केवलम कल्पते, पूर्व महाजन पथे चले अनायास, हमारे आचार्य लोग जिस पथ को लेकर के चले हैं जिस पर चले हैं उसी तरह से चलो, जिस प्रकार से जीविका का निर्वाह करते हैं किस रूप में, त्यागी लोग किस रूप में करते हैं और गृहस्थ लोग करते हैं, त्यागी त्यागी का वृत्ति अवलंबन करेगा। एक त्यागी व्यक्ति बैंक में 10 लाख रुपया देकर और उसके सूद से जीवन भरण पोषण करता है तो ये क्या है, ये त्यागी हमारे गुरु वर्गों ने आचार्य वर्गों ने ऐसा किया तो आचार्य वर्गों के विपरीत पथ है, इसलिए त्यागी त्यागी का वृत्ति। और गृहस्थ लोग माँ गुरु कहते हैं कुछ रख सकते हैं किंतु उसी के लिए मरेंगे बचेंगे उसमें ऐसे आसक्त हो जाएंगे, घर वालों से रोज झगड़ा उसी के लिए हो जाएगा, किसी से बनती नहीं तो फिर क्या हुआ भजन, इसलिए गृही गृही आचार्य कौन है, शिवान पंडित पांडव लोग हैं, महाप्रभु के सारे भक्त हैं, ये सब लोग गृहस्थ इसलिए इनका जीवन चरित्र ग्रहण करें हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो नित्य सिद्ध थे, ना तो हम उनका गृह में, हाँ तो उनका भी जीवन कुछ चरित्र ले सकते, तो पूर्व महाजनों ने जैसा किया था भाई ठीक वैसे लेकर के चलो तो हरि भजन होगा, और नहीं त्याग होकर के यदि हम कहते हैं कि एक साबुन का कारखाना हम कर देंगे, शिक्षा जाने की जरूरत नहीं रहेगी और कारखाना कर देंगे उससे जो रुपया आएगा तो उससे चलेगा मत, ये उचित है कि नहीं, गुरु महाराज ने इसको ऐसा ना, ये सब को सोच करके त्यागी लोग अपना भजन करेंगे, वैसे रूप सनातन इत्यादि की पद्धति में गुरु पर इत्यादि तक। नौ पथे उत्पाद आशिया जीवेना से जो लोग एकांतिक भगवान का भजन करते हैं किंतु श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र की विधियों को नहीं मानते हैं उनकी भक्ति तो सिद्धि नहीं होती, उपद्रव भी खड़े होंगे, जैसे बहुत से लोग हैं एकांतिक भक्ति और राधा जी को अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते किंतु एकादशी नहीं करते, एकादशी के दिन अन्न चावल दाल तरकारी सब खाते हैं पान चीज आते हैं, दूसरे दिन भी या सब समय पान इत्यादि का व्यवहार करते हैं, ये श्रुतियों में सब जगह मना किया गया है, स्मृतियों में मना किया गया, भारत में भी पंच क्या पांच नचा अरे दुर्गम पान स्त्री सुना और एक और शब्द उसमें स्वर्ण स्वर्ण माने अर्थ उसमें जोड़ दो, ये पांच इस से ये कली के क्या है
स्थान,
इन सबको दूर करके भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए यदि कोई एकाधिक भक्ति भी करता राधे 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 दिन भर करता है, कितने भी राधे राधे करता है और विधियों को नहीं मानता है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। चाहे राधे राधे करते के वे गल फंस जाए, राधे जी नहीं आएंगी। अनर्थ नाथे नाशे जत्न कभी नहीं जा, अनर्थ नाश करने की दूर करने की चेष्टा नहीं जिनकी है। और हरिनाम करते हैं तो नाम करते करते अनर्थ दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो अनर्थ बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इस विचार को अच्छी तरह से कर करके चले। अनर्थ नाश के दो उपाय हैं, एक उपाय क्या भक्ति के अनुकूल जो है उसको ग्रहण, और भक्ति का जो प्रतिकूल है उसको त्याग करो। अनुकूल को तुमने ग्रहण किया बहुत अच्छी बात है, प्रतिकूल वाला आपने नहीं माना तो फिर क्या होगा, वो भजन करते रहेंगे और दूसरे छेद से वो सब निकलता चला जाएगा। इसलिए अनुकूल को ग्रहण प्रतिकूल का वर्जन दोनों एक साथ में होगा। अनर्थ ना से जत्न कभू नहीं जा, नाम कृपा नहीं पाए दुर्दैव बता, उसके लिए दुर्दैव है, नाम की कृपा वो नहीं पाता। नाम कृपा बिना कोटि जत्न के ऊपर है तहां ते अनर्थ कभू नहीं छड़े तारे। नाम की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोटि उपाय करते रच पच जाओ, अनर्थ दूर नहीं। अनर्थ दूर करने का उपाय है साधु संग में हरिनाम कीर्तन, निष्कपट जतने कांदे नामे चरण, निष्कपट होकर के नाम प्रभु के चरणों में रो, हमारे अनर्थ दूर नहीं हो रहे, भजन नहीं जाने। रात में बहुत नींद आती है, दोपहर में नींद आती है, सब समय आलस्य रहता है। बहुत से लोग भजन करने आते हैं आश्रमों में, घर में से वो भाग करके आते हैं, क्योंकि घर वाले सब समय 24 घंटा काम में लगाए रखते हैं, चाहे खेती का काम हो या नौकरी का काम हो या जस, उनको वहाँ पर परिश्रम करना पड़ता है। देखते हैं कि सस्ते में मठों में जाने में कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठ करके आराम करके सो करके रहेंगे, कोई भी यहाँ पर तृण भंग नहीं करना चाहते और बस सोए रहेंगे, उसे भजन नहीं होता। मठ में पहले उनको स्थान दे दिया जाता है, ये बात तो ठीक है, किंतु पीछे देखते हैं कि यदि नहीं आता उनको सेवा का काम दे दिया जाए जैसे वो भाग जाते हैं अथवा अच्छी तरह से भजन। इसलिए मठ में जो रहने वाले हैं त्यागी वैष्णव को घर में जितना परिश्रम करते थे उसका 10 गुण परिश्रम करना पड़ेगा, आलस्य नहीं हो। इससे पहले उन्नीत्र इत्यादि के बाद बतलाया ना, दिन रात जब करके थोड़ा सा आहार करते हुए भजन करो दिन रात। अनर्थ छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, निष्कपटे जतने कांदे नामेरे चरणे, दूर है अनर्थ तहां अल्प दिन। थोड़े दिनों में ही यदि उनके चरण में हम प्रार्थना करेंगे तो अनर्थ दूर हो सकते, अन्यथा नहीं हो सकते। अनर्थ छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, एकांत भावे ते लो नामेरे शरण, नाम का शरण लेकर के अनर्थ को छोड़ करके कृष्ण नाम का कीर्तन करो। अनर्थ को हमने बदला है पहले ही, इसलिए उसको आप नहीं बदला रहे। चार प्रकार के अनर्थ हैं और चारों चारों चार चार प्रकार के अनर्थ, ये 16 प्रकार के अनर्थ हैं। एक बार ना तो संक्षेप में बदला दूं, मायामुग्ध जीवों के चार प्रकार के अनर्थ हैं, या स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, ये चार। इसमें स्वरूप भ्रम भी चार प्रकार के, भगवान के स्वरूप में परतत्व के स्वरूप में भ्रम, जीवों के तत्व के में भ्रम, साध्य और साधन का भ्रम और विरोधी विषय में भ्रम। विरोधी माने विरोधी भाव क्या, अभक्ति कोई भक्ति मान ले उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कुमारिल भट्ट का नाम सुना होगा, शंकराचार्य के समय में थे, शंकराचार्य से पहले बौद्धों का बड़ा युग चल रहा था, बड़ा प्रभाव, दुर्दांत प्रभाव था। बौद्धों ने कहा वेद मिथ्या है, पंडितों को रोजगार करने के लिए, धंधा के लिए है, ये प्रमाण नहीं हो सकता, कल्पित है, देख उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कुमारिल भट्ट का नाम सुना होगा, शंकराचार्य के समय में थे, शंकराचार्य से पहले बौद्धों का बड़ा युग चल रहा था, बड़ा प्रभाव, दुर्दांत प्रभाव था। बौद्धों ने कहा वेद मिथ्या है, पंडितों को रोजगार करने के लिए, धंधा के लिए है, ये प्रमाण नहीं हो सकता, कल्पित है, बेकार, भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, जगत शून्य है। जितने ये व्यवहार में ये यज्ञ इत्यादि जो दिखते हैं, भगवान का नाम, भक्ति इत्यादि सब बेकार का, झूठा कल्पना है, और इसका खंडन मंडन करते थे। साधक यदि ठीक है तो हम एक बुलाते हैं, एक नए आदमी ऊपर में बैठा है और नीचे में मंत्र से उसको दें तो ऊपर में पहुंच जाएगा वह भोजन, समझ रहे हैं? यदि मंत्र के द्वारा अपने मरे हुए व्यक्तियों को आप तृप्त करते हैं तो छत पर हमारा कोई आदमी बैठा है और नीचे से तुम मंत्र से उसका पेट भर दो, ऐसा तो होता नहीं, ये सब झूठी बकवास है। उसी समय कुमारिल भट्ट वेदों की यह सब देखा तो उनका विभाग, उन्होंने बौद्ध मत को खंड विखंड करके छोड़ दिया, भाई गड़बड़ मत कर, खंड विखंड करके उसको छोड़ दिया और वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की, विशेष करके पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा मैंने क्या, जैमिनी वाला कर्मवाद, वो बौद्ध मतों का खंडन करना था, अपने मत में तो पारंगत थे किंतु बौद्धों की मत में सुना जो था बस उसी में पारंगत थे, इसलिए खंडन विखंडन में उनको अच्छी तरह से परास्त नहीं कर सके। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में गए और वहां पर बोले जी मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध सन्यासी का वेश बनाया, उम्र छोटी सी थी, अभी 18-20 वर्ष के नौजवान थे, जाकर के उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध भिक्षुक हूँ, वैसा वेश बना करके वहां पर एडमिशन लिया। और वहां के प्राचार्य जो थे, प्रधान अध्यापक, उनसे बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को पढ़ा, पाली भाषा सीखी संस्कृत के बदले, और सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ करके उनसे अच्छी तरह से समझ लिया। एक दिन वो वेदों की निंदा उसका प्राचार्य कर रहा था और इतना निंदा करने लगा, वेद मूर्खों की चीज़ है, पंडित लोगों ने इसे बनाया है और ये अपना पेट भरने के लिए दूसरों को ठगने, इनके आंखों में से आंसू आ गए, हजारों छात्र थे इनके आंखों में आंसू आ गया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भीग गए। जो उनके पास में बच्चे थे उन लोगों ने कहा प्रसाद जी ये महाशय तो रो रहे हैं, ये बौद्ध धर्म का भिक्षु कभी भी नहीं हो सकता, ये रो क्या हो रहा है? उन्होंने इनको बुलाया क्यों रो रहा है, क्या इसलिए कि हमने उसका जो खंडन किया वेदों का और ईश्वर का खंडन किया पर भगवान का इसलिए रो रहा है? हाँ मैं उसी ले, तो तुमको उसके विषय में यदि कुछ कहना है तो बोलो, तो ठीक है आप प्रमाण कीजिए जो वेद असत्य हैं और इसके कोई सत्यता नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, आप वो करने लगे और इसका कुमारिल भट्ट खंडन करने लगा क्योंकि अपने शास्त्र में प्रवीण था और इनके मतों में जो जो दोष थे इनको अच्छी तरह से जान लिया था, उसका खंडन करने लगा, अंत में उसके प्रचार जी हार गए। जब हार गए इसकी विजय हो गई और वहीं से अब भारे भारतवर्ष में घूम करके बौद्ध धर्म का उन्होंने खंडन करना आरंभ किया, अपना स्वरूप बता दिया। जब सब देश में इधर शंकराचार्य भी उसमें मिल गए तो भारतवर्ष में वैदिक धर्म की स्थापना हुई। तो अंत में इन्होंने कहा हमने दो अपराध किए हैं तुम्हारे भट्ट, पहला अपराध तो ये किया कि जिस गुरु से हमने जैसे भी हो एक भी कोई शब्द सीख लें उसका जीवन फिर रेडी रह जाता है। गुरु से हम जो कुछ सीखते हैं, अभी हरि नाम लिया
उसे हरि कथा सुनी, थोड़ी सी भी उनका जीवन भर ऋणी रहेंगे। इसलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु इत्यादि माने जाए। इसलिए उनके चरण में कभी अवज्ञा नहीं होनी। तो मैंने अवज्ञा की, मैंने उनको परास्त किया और परास्त होने के नाते वो आग में जल करके मर गए हमारे गुरु जी। इसलिए एक अपराध हमारा गुरु। और दूसरा, पूर्व मीमांसा में कर्मों की प्रधानता स्थापित करने के लिए हमने ईश्वर को भी नकार दिया। ईश्वर असिद्ध है, कर्म जो हम करते हैं वही कर्म हमारा फल देने वाला होता है और इसी से स्वर्ग इत्यादि सब कुछ मिलता है, इस जन्म में सुखी रहते हैं, इसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर है, किंतु जमीनी जी की बात को रखने के लिए हमको बाध्य होकर के ये कहना पड़ा, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इन्हें कर्म प्रधान है, ईश्वर की कोई जरूरत, ईश्वर आश्रित है, हमने ये लिखा। इन दो कारणों से मैं अब जलती हुई आग में नहीं, किस आग पर? तुषा की आग पर। धान होता है उसका जो छिलका होता है वो एक बार धधकता हुआ और फिर खत्म नहीं हो जाता, उसको रख दो कौड़ी में तो दिन भर रात भर उसमें आग बनी रहती है, आग ऊपर से दिखती नहीं, उसके ऊपर में वो जल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य हम किसके लिए कहा था? विरोधी। यदि वो विरोधी लोगों का विचार नहीं जान लेते तो बहुत मत खंडन नहीं कर सकते थे। इसलिए विरोधी चीजों को, माया क्या चीज है, अविद्या क्या चीज है, अपराध क्या चीज है, अद्वैत बात भक्ति का विरोधी ये क्या है, सहज या सखी भाई ये इत्यादि मत भक्ति के विरोधी हैं, इसका विचार क्या है, ये सब विरोधी चीज है, इनका भी तत्व जान लेना चाहिए। और नहीं तो फिर आप भक्ति को अभक्ति, अभक्ति को और साधु को असाधु, और असाधु को ही जान पड़ा सरदारी बना करके और तिलक लगा करके कपड़े ले लिया, एक त्रिशूल ले लिया, सिंदूर लगा लिया, बस ये महात्मा। थोड़ी सी वो जानता है गणना करना या कुछ, हाथ दे करके कहा जाए देखो अभी चौथे महीने में आपकी मृत्यु का योग है और आपके ऊपर में बहुत से कुछ चक्कर है और राशियां नक्षत्र आपके विपरीत है, आप जल्दी से एक यज्ञ करा करके, और कोई जानता नहीं मैं ही यज्ञ कराना जानता हूँ, उसमें सोना दान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब जाल बिछा करके पैसे हड़प करके लिए, इसलिए इससे भी सावधान रहिए। असत तृष्णा भी भगवान के भक्ति का अतिरिक्त असत तृष्णा भी चार प्रकार की, लौकिक कामना, स्वर्ग इत्यादि की कामना, एषणा नाना प्रकार की दूसरी कामनाएं, भूति वांछा, भूति वांछा मैंने क्या, भोग की इच्छा, मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा, ये चार प्रकार की असत तृष्णा है, इनको दूर करें। अपराध, अपराध विचार है कृष्ण नाम के प्रति, कृष्ण नाम का जो स्वरूप कृष्ण स्वयं है उनके प्रति, चित कनेशु जीवों के प्रति, कृष्ण कृष्ण नाम ये दो, और तदीय, तदीय मैंने उनके जितने भी भक्त हैं उनके प्रति, और चित कनेशु जितने भी जीव हैं उनके प्रति, किसी के प्रति भी अपराध न हो। कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण तदीय माने भक्त, तदीय माने गंगा जमुना भी तुलसी भी तदीय है, गोवर्धन भी तदीय है, भक्त लोग तदीय है, इनके प्रति भी अपराध नहीं हो। और चित कनेशु कोई भी जीव मात्र है, जहाँ भी है पेड़ पौधा कीट पतंग, कहीं भी उनका अपमान इत्यादि न करे। हृदय दौर्बल्य भी चार प्रकार के हैं, तुच्छ आसक्ति कुटी नाटी, जो चीज नहीं है कु और टी, कुटी नाटी जो नहीं है, जितने खराब चीजें हैं उनको, और जो वैष्णव का उचित आदर नहीं करता, जैसे इंद्र बृहस्पति की प्रतिष्ठा नहीं सह सके, अपनी प्रतिष्ठा के लिए हृदय दुर्बल होने के नाते उनको क्या किया, उनका अपमान एक तरह से किया।
वो यदि यहाँ नहीं आते तो अच्छा होता।
कभी कभी
कोई पूछता है कि वो कैसे महात्मा है, तो वो प्रशंसा नहीं कर पाता।
क्यों?
लोग कहेंगे और इनसे भी बड़े हैं वो, इसलिए नहीं कर पाता। इसलिए ये सब चीज़ों को दूर रख करके भगवान का भजन करना चाहिए।
इंद्र का परिणाम क्या हुआ है? इंद्र का परिणाम तो बताइए क्या हुआ?
इंद्र का
बृहस्पति को अवज्ञा करने से जो परिणाम हुआ,
अपने राज्य से भ्रष्ट हुआ इंद्र, शुक्र की जोनी मिली, क्या हुआ? भजन की अनुभूति होगी, अन्यथा भजन की अनुभूति होना बड़ा भारी कठिन है। लो बोलो, भजन कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? एकांत भक्तेर मात्र कीर्तन समर्थ, एवं एकांतिना प्राय कीर्तनम स्मरणम प्रभु। कई भक्ति विलास में बतला रहे हैं एकांतिक भजन पराय, माने क्या? जो रागानुगा भजन में प्रवेश करना चाहते शुद्ध भक्तों के लिए, एकांत भक्तेर मात्र श्रवण। ये जो एकांतिक रागानुगा में जिनको लोभ हो रहा है, वो श्रवण और कीर्तन उनका प्रधान होता है। आज अन्य पर्दे रुचि नहीं है प्रवर्तन, और दूसरे अंगों में उनकी रुचि नहीं होती, माने क्या? श्रवण कीर्तन श्रवण तो निश्चित रूप में है, श्रवण के बिना रुचि नहीं आएगी, एकांतिक भक्त नहीं हो सकता। इसलिए श्रवण को तो आधार भूमि के ऊपर में रखो, इसके ऊपर में कीर्तन और श्रवण। कीर्तन दो बहुत प्रकार के, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का सुखदेव गोस्वामी के समान कीर्तन, स्वर करुणा के साथ में भगवान का नाम रूप गुण का कीर्तन नरोत्तम ठाकुर की भांति, सुखदेव गोस्वामी के पास। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस युग में कैसा किया कीर्तन? आदर्श फोन मृदंग कभी नहीं बजाया, करताल बजाया हुआ कि नहीं हमको मुझे पता नहीं, किंतु उनकी कीर्तन की गूंज सारे विश्व में गई। उनकी लेखनी के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से सारे विश्व में ये कीर्तन, ये भी कीर्तन है। ऐसा मत समझो अनर्थों से घिरे हुए रहकर शुद्ध वैष्णवता का ग्रहण नहीं किया आचार विचार का, और कीर्तन थोड़ा सा हम बड़ी सुंदर कर लेते, वही कीर्तन नहीं। इसलिए पहले जो बतलाया गया अनर्थ से रहित होकर चारों प्रकार के 16 प्रकार के अनर्थों से दूर रहकर भक्तों के अनुगत्य में जो भजन करता है, उन लोगों के लिए श्रवण और कीर्तन और स्मरण प्रधान। अन्य पर्वे नहीं रुचि नहीं प्रवर्तन, अन्य पर्व माने श्रवण कीर्तन स्मरण क्या, जैसे अर्चन और सब जितने अंग नहीं, 64 अंग है ना, 64 अंगों में इनके अतिरिक्त कीर्तन का अंतर्गत वंदना स्तौल स्तुति। प्राचीन हमारे जो आचार्य हैं उनके बनाए हुए श्लोक कीर्तन इत्यादि, ये भी कीर्तन के अंतर्गत है। जैसे वंदना स्तौल स्तुति करते हैं, हे कृष्ण नमो विष्णु पादाय, अथवा वो जो वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, ये जो करें ये कीर्तन है, ये भी कीर्तन है। इसलिए वंदना स्तौल हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये कर ये भी कीर्तन। इसलिए कीर्तन स्मरण में स्मरण क्या, भगवान की नाम संबंधी जितनी भी लीलाएं हैं या कृष्ण की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का चिंतन अष्टकालीय रीति आदि इसी के अंतर्गत। भावेर सहित है कृष्ण सेवा, स्थूल रूप में कृष्ण का अर्चन की अपेक्षा भाव के साथ में कृष्ण का ये भजन ऐसा, ये बहुत श्रेष्ठ है। स्वारस्य की भाव क्रमे है उत्ति, मंत्रमयी और स्वारस्य की। मंत्रमयी मैंने केवल एक लीला का, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम, ये एक मंत्र एक भाव। और इसके साथ में उसके बाद वाली लीला, पहले वाली लीला रामलीला तक, ये सबको एक कड़ी में जोड़ दो। और क्रमशः सवेरे से शाम रात तक की सारी लीलाओं का चिंतन, ये स्वारसिकी एकांत भव कर क्रिया मुद्रा रागोदी तथा से सब न है विधि विपरीत, एकांतिक भक्तों की क्रिया मुद्राएं। अतः ये जो स्वारसिकी भजन करने वाले राग भक्त हैं, क्या रागानुगा भजन का जो करने वाले हैं, उनकी क्रियाएं जितनी होती हैं राग से उदित होती हैं, राग माने राग से संबंधित होती हैं, किंतु विधि भक्ति के विपरीत नहीं होती। उनके उनके दोनों के विधियां एक ही हैं, किंतु भावना दूसरी है, भावना का अंतर है, दोनों चीजें एक ही हैं। सर्वत्याग कर ले वो छाड़ा तू कठिन प्रतिष्ठा का आगे जत्न पाई दे प्रवे, सब कुछ त्याग कर दिया, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति छोड़ दिया। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि घर में धनी थे और सब छोड़ करके मठ में आकर के धन संग्रह करते हैं, उसको भी छोड़ा जा सकता है, किंतु प्रतिष्ठा का छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। और भजन में जब तक प्रतिष्ठा रहेगी तब तक शुद्ध भजन नहीं होगा, इसलिए इसका प्रतिष्ठा की आशा को भी छोड़ देना बहुत जरूरी है। किंतु ये जाएगा कर बिना नाम की कृपा साधु और गुरु की कृपा से ये भी नहीं जाएगा। प्रभाते कैसे भजन करेगा, इन सब बातों के साथ साथ में प्रभाते, प्रभाते माने क्या, प्रातः माने सूर्योदय से पहले, गंभीर रात्र, गंभीर रात्र किसको कहते हैं,
मध्य रात्र,
आपकी रात मध्यान्ह, क्योंकि उस समय आदमी सो जाते हैं, मध्यान्ह में भी सो जाते हैं, उनको निर्जन मिल जाएगा, इसलिए रात के समय में और दिन में मध्यान्ह काल में भी अधिकांश आदमी सो जाते हैं हमारे जैसे, उन लोगों को सुविधा मिल जाएगी, इसलिए बोलो निश्चिंत रूप में कर। और संध्या, संध्या के समय में भी भजन करते हैं, इसलिए ये सभी आठों काल आ गए, इसमें प्रभात, गंभीर रात्र में, मध्यान्ह में, संध्या, इस समय में भगवान का भजन एकांतिक व्यक्ति करेगा। अनर्थ छड़िया लो नामे राष्ट्र, अनर्थ को छोड़ करके हे रूपे कीर्तन श्रवण यही करे, कृष्ण कृपा हरे शीघ्र अनायास तरे, उनको कृष्ण की कृपा सहज ही अनायास ही बिना परिश्रम के उनको हो जाए। और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसको ग्रहण नहीं करते, उनको क्या होता है, कृष्ण की कृपा नहीं, कैसे नहीं करती कृपा, क्यों नहीं होती, उनको धन दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, सिद्धि दे देते हैं नाम करने से, किंतु प्रेम जो है वो नहीं देते। श्रद्धा करी साधु संगे नाम लॉ है तो अच्छी तरह से देखो, श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लॉ, अनर्थ सफल जाए निष्ठा उपजाए, साधुओं के संग में रहकर उनकी कृपा से यदि हमारे नाम करें, उनका आश्रय लें, तो अनर्थ जाएगा और निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। निष्ठा उत्पन्न होने पर कोई चिंता की बात नहीं है, जितनी चिंता की बात है निष्ठा उत्पन्न नहीं होने पर। प्रातः काल नित्य लीला करिबे चिंतन, चिंतित चिंतित से भावे रही दे। और इसके बाद में बतलाया है राधा स्नान, श्रीमती राधिका जी स्नान करके यशोदा के घर में कृष्ण की रसोई बनाने के लिए गई।